अगली आयतों में अब हिजरत की बातें हैं। जैसा कि हमने देखा कि सूरत अल इसरा जो है ये मक्की दौर के आखिर में नाजिल हुई। हालात बहुत तंग थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ऊपर जुल्म और सितम तो था ही था, अब तो उनके ऊपर इस तरह के हमले हो रहे थे कि सौदेबाजियां करके उनको ख़रीदा जाए। ऐसे वक्त में आम लोग अपना ईमान नहीं बचा पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चूँकि अल्लाह ताला की ताईद शामिल थी, अल्लाह ताला ने उनको बचाया और वक्त आने से पहले आपको एक दुआ सिखाई और वो दुआ हमारे सामने है इस वक्त, आयत नंबर 80। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق। और दुआ कीजिए कि मेरे रब मुझे दाखिल कर इज्जत का दाखिल करना और मुझे निकाल इज्जत का निकालना। और क्या कीजिए, वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे खास अपने पास से मददगार कुव्वत अता फरमा। ये आयत अपनी जगह एक मुकम्मल आयत है। मक्की दौर के आखिर में सिखाई गई दुआ, मदीना की हिजरत करीब आ रही थी, अभी काम शुरू नहीं हुआ लेकिन दुआएं सिखाई गईं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ये मालूम था कि अब दीन का मरकज़ किसी और जगह पे मुंतकिल होने वाला है। और यहाँ हमारे लिए भी एक इशारा है कि कामों को शुरू करने से पहले दुआएँ करनी शुरू कर दें कि अल्लाह इस काम के लिए रास्ते तू आसान कर दे। और हकीकत यह है कि जब अल्लाह ही किसी काम को आसान करता है तो वो काम आसान होता है। पिछली आयत में आपको हुक्म था कि वमिन लैली फतहज्जुद बिही, रातों को अल्लाह के सामने खड़े हों, गोया के ताल्लुक बिल्लाह मजबूत कीजिए। और वो ताल्लुक कि जिसके बाद अल्लाह की मदद आती है। और अब इसके बाद इशारा क्या है कि अमली काम जब आए, जब आपको दीन के लिए अपनों को, अपनी प्यारी जगहों को, अपनी चीज़ों को छोड़ना पड़े, तो फिर दुआ मांगे। बिल्कुल यही अंदाज सूरत मुज़म्मिल और मुदस्सिर का भी है। सूरत मुज़म्मिल में तहज्जुद का जिक्र है, रात में अल्लाह से ताल्लुक़ की बातें हैं, और मुदस्सिर में कुम फानज़िर में दिन के वक्त अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाना है। और ये दुआ अल्लाह ने कबूल की, और कैसी कबूल की कि मक्का में तकलीफ़ें थीं, मदीना में आसूदगियाँ मिल गईं, वहाँ ईज़ा रसानियाँ थीं, लेकिन मदीना में इज़्ज़त भी मिली, सआदत भी मिली। मक्का के लोग दुश्मन थे, मदीना वाले मददगार बन गए। मक्का में खौफ था, मदीना में अमन दिया, हिफाजत की। और आप कह सकते हैं कि मक्का में मुसलमान महकूम थे और मदीना में आने के बाद खिलाफत मिली। इतनी खूबसूरत दुआ है कि आज भी इस दुआ का असर देखा जा सकता है। मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ तफसीरें की हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बात है रब्बी अदखिलनी, ए मेरे रब मुझे दाखिल कर। दखला का लफ्ज़ पहले आया, हालांकि पहला लफ्ज़ क्या आना चाहिए था अगर हम अपनी अक्ल से सोचें तो, रब्बी अखरिजनी मुखरज सिदकिन वदखिलनी मुदखला सिदकिन। लेकिन आप देख रहे हैं कि निकाले जाने का जिक्र बाद में, दाखिल होने का पहले। पहले तो इस फ़र्क को महसूस कीजिए, बड़ा लतीफ़ नुक्ता है। अल्लाह के नबी मदीना में अभी खुद नहीं पहुँचे थे कि आपका पैगाम पहुँच गया था। आपके जाने से पहले मदीना वालों ने दिल खोल दिए थे, अपने सारे रिसोर्सेज अल्लाह के नबी और अल्लाह के दीन के लिए इस तरह आम किए कि अल्लाह के नबी के जाने से पहले वहाँ लोग रास्ता देख रहे थे। मारूफ जो आपने सुना व नशीत अला बद्रु अलैना, वो इस बात की दलील बनती है अगर हम उसको ठीक समझें। और वो क्या है कि मदीना वाले आपके मंतज़र थे। अल्लाह ताला ने यहाँ ये इशारा दिया कि एक जगह के लोग आपके निकलने की अभी इतनी तमन्ना नहीं कर रहे कि निकलें, जाएं, जान छूटे, बल्कि दूसरी जगह वाले आपका राह देख रहे हैं। आप इसको यूँ समझिए कि आपको यहाँ से पाकिस्तान जाना है, घर वाले आपके जाने अनजाने को कैसे ले रहे हैं उसको पीछे कर दें, लेकिन ये आपको पता है कि वहाँ वाले आपका रास्ता देख रहे होते हैं। तो यहाँ अदखिलनी मुदखला सिदकिन को पहले लाना मदीना वालों की आपके लिए मोहब्बत को साबित करना है। कभी सोचा आपने ये नुक्ता पहले? कितनी बार कुरान पढ़ा, कितनी बार ये दुआएं पढ़ी, लेकिन हम बहुत कम सोचते हैं कि अल्लाह के कुरान की एक एक बात उसकी जगह पे है। हम कह सकते हैं गलती से हो गया, मैंने पहले की बात बाद में कर दी, बाद की पहले कर दी, اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. دوسری بات ہے کہ اگر خاص معنی دیکھیں تو واقعی پھر یہاں مدخل کیا ہے مدینہ، تو مخرج کیا ہے مکہ. تو پہلا اس کا معنی تو وہی ہوا ہجرت، کہ کہیں میرے جانے کو لوگ بزدلی نہ سمجھیں کہ جان بچا کے چلے گئے. اور یہاں ایک جملہ ہم مسلمان بھی کبھی کبھی غلط فہمی سے بول دیتے ہیں ایسے انجانے میں، تو وہ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے جان بچانے کے لیے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی، ایمان بچانے کے لیے. جان بچانی ہوتی تو بہت پہلے چلے جاتے، لیکن اصل میں ہجرت ہوتی ہے ایمان بچانے کے لیے، نیکیاں بچانے کے لیے. اور دوسری اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ یہاں مراد ہے قبر میں جانا. اب دیکھیں، آپ ایک لائن بنا لیں، مدخل اور مخرج لکھ لیں. پہلا مدخل کیا ہے؟ مدینہ. تو مخرج کیا تھا؟ مکہ. دوسرا سینس کریں کہ یہ قبر میں جاتے وقت کی دعا ہے، تو پھر مدخل کیا ہوگی؟ قبر. تو مخرج کیا ہوگا؟ یہ دنیا. کہتے ہیں کہ یہاں اس سے بھی مراد ہے کہ جب اللہ میں دنیا سے مروں تو اس وقت میرا اس دنیا کو چھوڑنا بھی خوبصورت ہو اور میری قبر کی جگہ بھی خوبصورت ہو. تیسری تفسیر کی گئی ہے کہ یہاں مدخل سے مراد جنت ہے، تو پھر مخرج سے مراد قبر ہوگی. ساری مرحلے ٹھیک ہیں؟ جب بھی کوئی کہیں جائے اس دعا کو پڑھ لیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور سلطان کہتے ہیں برہان واضح کو، قوت، غلبہ، حکومت. نصیرہ ناصر سے. آپ دیکھیے کہ مکہ میں تبلیغ تھی، تبلیغ کے لیے صرف انسان خود ہو تو چل پڑتا ہے، جتنے ریسورسز ہوں بات پہنچ جاتی ہے. لیکن مدینہ میں اسلام نافذ ہونا تھا، اور اسلام نافذ ہونے کے لیے ریسورسز، مال، گھر اور جگہوں کی ضرورت تھی. مکہ میں بھی اللہ کے نبی کا دین پنپ سکتا تھا، لیکن مکہ کے جو رئیس تھے نا، جو امیر لوگ تھے، انہوں نے اسلام کے لیے دل نہیں کھولے. ان کے بڑے بڑے گھر تھے، جائیدادیں تھیں، کنبے تھے، برادریاں تھیں، اولادوں اور مال والے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ اسلام کے سامنے تحفے کے طور پر پیش نہیں کیا. وہ اپنی جائیدادوں اور اپنے گھروں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر تو خوش ہو رہے تھے، لیکن اسلام کے لیے تو وہاں جگہ نہیں. ایک عام سے صحابی، ارقم نام کے صحابی نے اپنا گھر کھول دیا تھا، وہ جگہ آج بھی لکھی گئی دارالارقم بن گئی تھی. مکہ میں اسلام نہ پھیلنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہاں سلطان النصیرہ کے ریسورسز نہیں تھے. تو بات کیا پتہ چلی؟ آج بھی اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ اسلام پھیلے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اسلام کے پھیلنے میں. ایک ہے اس کی تبلیغ ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کو پہنچانا، دعویٰ ہو، یہ بہت آسان ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ بات کر سکتا ہے. لیکن صرف تبلیغ تو اس طرح ہو سکتی ہے، لیکن اپلیکیشن چاہے اگر اسلام کی، تو آپ کو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسلام چاہیے، ماحول چاہیے، حکومت چاہیے، ریسورسز چاہیے. آپ کو ایسا اسٹرانگ قسم کا سیٹ اپ پیش کرنا پڑے گا کہ پوری دنیا کے مقابلے میں آپ اللہ کا نظام نافذ کر رہے ہیں. مدینہ میں یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے جانے سے پہلے لوگ وہاں تیاریاں کر رہے تھے. چند روایتیں سنیے جس سے آپ کو ہجرت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. مسند احمد میں ابن عباس سے روایت ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور یہ آیت اتری. پھر اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیں یا نکال دیں یا قید کر لیں. مکہ والوں کے ارادے کیا تھے؟ لیکن اللہ کا یہی ارادہ ہوا کہ اہل مکہ کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھا دے. اس نے اپنے پیغمبر کو مدینہ جانے کا حکم دیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ سچائی کے داخلے سے مراد موت ہے، اور سچائی سے نکلنے سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے. وہی ساری باتیں جو ہم نے کر دی. اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کا ملک اور عزت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا. اتنا تو اللہ کے نبی معلوم کر ہی چکے تھے کہ بغیر غلبے کے دین کی اشاعت اور زور ناممکن ہے. جیسے آج کے دور میں ہم مسلمان حکومت قائم کیے بغیر دنیا میں اسلام کا نظام نافذ نہیں کر سکتے نا. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے اس وقت ہم ویسٹ میں بیٹھے یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نا اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے. یہ ایک ویسٹرن کنٹری ہے، ہم یہاں بیٹھ کر پوری شریعت بھی پڑھ لیں، لیکن اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے ہمیں حکومت چاہیے نا. یہ ہے سلطان النصیرہ، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے وہ کام لے لیتا ہے کہ جو دینداروں سے نہیں لے پاتا. دین والے تو شعور بیدار کریں گے نا، لیکن حکومت میں جو لوگ ہوں گے وہ پھر اس کو آگے لے جانے پر انسان کی مدد کریں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات بندے کا جب ساتھ دیتی ہے تو چھوٹی چھوٹی کوششوں میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی اس دعا کے اوپر اللہ نے انصار کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی، آپ کی قوت مضبوط ہوئی، آپ کے لیے وہ اس طرح سے بچھے کہ اللہ نے ان کو انصار کا لقب دے دیا اور وہاں اسلام پھیل گیا۔ آپ کے جانے سے پہلے ہی مصعب بن عمیر اور سعد بن زرارہ اور اسی طرح ایک دو اور نام ہے، انہوں نے اسلام کا کام شروع کر دیا تھا۔ مقری کہتے ہیں ان کو، حضرت مصعب بن عمیر کو، پہلے استاد تھے، پھر اسی طرح وہاں دو بڑے لیڈر مسلمان ہو گئے تھے۔ اگر آپ پڑھا کریں، سعد بن معاذ کا نام پڑھا ہوگا، یہ اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ایسے ہی جیسے آج کسی حکومت کا کوئی نمائندہ مسلمان ہو جائے، پھر وہاں کوئی مسلمان جائے اور وہاں بات لے کر چلے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب اللہ نے مدد دینی ہوتی ہے تو اچھے ساتھی دیتا ہے۔ پیچھے بھی ایک بات کہی تھی، یہاں دہرا دیتی ہوں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ کیوں نہ ملا، اتنی بڑی نفری ان کے ساتھ تھی، اس کی وجہ یہ کہ آپ کو اچھے ساتھی نہیں ملے۔ آج امام ابو حنیفہ کے ماننے والے زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے شاگرد اچھے تھے۔ تو دنیا میں بھی غلبہ اسی کو ملتا ہے کہ جس کو اچھے ساتھی مل جاتے ہیں، اور دین کا کام تنہا نہیں ہوتا۔ آگے ہم پڑھنے والے ہیں ایک آیت میں کہ کس طرح اس میں ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، پھر ہی وہ مشین کام کرتی ہے۔ ایک پرزہ اپنی جگہ پہ نہ ہو، کام کرنا چھوڑ دے، تو اس کے بعد پھر ساری کی ساری مشین جو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ مجھے مخرج صدقن، تو صدق سے کیا مراد ہے؟ سچائی، میں سچا ہوں اپنے کام میں، یہ نہ ہو کہ نام میں دین کا لے رہا ہوں، فائدہ میرا اپنا کوئی ذاتی ہے، نام اسلام کا لیتا ہوں، کام اپنے نام کے لیے کروں، مکہ سے ایک اچھے مقصد کے ساتھ نکلوں اور مدینہ میں ایک اچھے مقصد سے داخل ہو جاؤں۔ اس دعا کی برکت سے دین نے جڑیں پکڑی اور دین پھیلا۔ کل کی ایک بات کا حوالہ دینا چاہوں گی، بہت ہی اپروپریٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سیٹرڈے کلاس ایک شروع ہو رہی ہے بچوں کی، لڑکیوں کے لیے، تو ظاہر ہے سب سے بڑی چیز جگہ ہوتی ہے، جہاں تک ریسورسز بندہ یوز کرتا ہے کرتے ہیں۔ ہم ایک جگہ ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے جو بات کہی تھی وہ کیا تھی، گاڑی میں بیٹھے تھے جب ہم، دو باتیں، جی شاباش، انہوں نے کہا کہ کوئی جگہ ہم نے دیکھی، ہمیں جگہ بھی اچھی لگی، لیکن ان کا خیال کیا تھا کہ استاذہ لوگ ادھر نہیں آئیں گے، یہ جگہ دور ہے، اور جو بھی مطلب ریسورسز کے حساب سے ہم دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے ان دونوں جو بھی میرے ساتھ ساتھی تھے، ان کی بات سننے کے بعد میں نے ان کو صرف ایک ہی بات بتائی تھی کہ یہ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ دو چیزیں اگر آپ کے اندر آ جائیں گی نا، تو آپ چاہے چاند پہ بھی جا کے کوئی کام کریں گے نا، تو لوگ وہاں بھی آئیں گے۔ پہلی چیز اخلاص، کرنا کس لیے؟ نیت اللہ کے لیے، بچیوں کی اصلاح چاہیے، نئی نسل سنوارنی ہے، مسلمان بچوں کو پڑھانا ہے، نیت چیک کرو۔ اپنا نام نہ ہو کہ اب ہم اپنے نام کے ساتھ فخر کر سکیں کہ اب دیکھو پہلے عورتوں کو پڑھاتے تھے، اب بچوں کو بھی پڑھانے لگے، یہ نام نہ ہو، نیت صدق ہو۔ اور دوسری میں نے ان کو بتایا تھا کہ طریقہ کار، کرتے کیا ہے وہاں جا کے، پڑھانا کیا ہے، طریقہ کیا ہے، رولز کتنے ہیں، ریگولیشنز کتنے ہیں، آتے کدھر ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی اندر کی گلی میں بھی بیٹھ کے شروع کریں گے نا، ٹھیک ہے شروع میں ایک ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے، یہ بھی میں مانتی ہوں، کچے پکے لوگ شروع میں نہیں جاتے تھوڑی سی دور جگہوں پہ یا نئی جگہوں پہ، لیکن ایک دفعہ شروع ہو جائے اس کے بعد آپ کسی یہاں سے آدھا گھنٹہ دور بھی لے جائیں گی نا، لوگ جائیں گے۔ کائنات میں یاد رکھیے، نفع جیتتا ہے، جس کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیے، اس دعا کی برکت تھی کیا تھی، یہ تو اللہ کے نبی کا عقیدہ تھا۔ پھر آپ دیکھیے دعا میں لفظ کتنے خوبصورت ہیں، مخرج، مدخل، نکرہ ہے۔ نکرہ سے مراد ہے کہ کامن بات ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو مدینہ کی ہجرت سے نہ رکھیں، جس جگہ جب بھی جائیں کسی کام کے لیے اس کو پڑھ لیں، مثلا موت کے بعد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا، پاکستان جائیں گے، یہاں سے لندن چھوڑ کے پاکستان ایک مہینہ رہنے جاتے ہیں چھٹیوں میں، گرمیوں میں، پڑھ لیجئے کہ اللہ مدخل بھی اچھا کر دے، مخرج بھی اچھا کر دے، یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی خیر ہے۔ آپ روز اس سکول میں آتے ہیں نا، واللہ آپ اس کلاس روم میں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے آیا کریں کہ رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ اس دعا کی برکت تھی کہ اس دنیا کے نقشے پر مدینہ نام کی پہلی اسلامی ریاست بن گئی۔ آج 100 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں اسلام کے نام پہ، پہلا ملک مدینہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جو مدینہ کی حیثیت ہے نا، ابھی نہیں کروں گی بات، ایک درس پورا اس پہ کیا ہوا ہے، شاید پچھلے سال کہیں کیا تھا، मदीना और पाकिस्तान इज इक्वल टू, मदीना तो नबी क्या है, मदीना मुनवरा, पाकिस्तान को अगर आप फारसी का लफ्ज है ये पाक और इस्तान, आप इसको अरबी में ट्रांसलेट करके देखें, पाक कहते हैं तैयब को, तैयबा, और इस्तान कहते हैं शहर को, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। लफ्ज पाकिस्तान का अरबी तर्जमा मदीना तैयबा है, पाक सिटी। उस वक्त भी जिनके अंदर इखलास था अल्लाह ने तभी दिया, ये कोई कायदे आजम का मार्का है कि पाकिस्तान बनता, वल्ला ही नहीं, ये अल्लाह सिर्फ एक तोहफे के तौर पे ऐसे लीडर्स दे देता है जो डेडिकेटेड होते हैं, काम काम और सिर्फ काम। अगर आप सिर्फ कायदे आजम, जिनको बहुत सारे लोग सेक्युलर शख्सियत के नाम से जानते हैं क्योंकि जाहिर तौर पे उनके ऊपर इस्लाम नहीं दिखता, दाढ़ी नहीं थी, या वो पढ़े बाहर के मुल्कों के पढ़े थे, लेकिन आप उनके एथिक्स जाके पढ़ें, कितनी उनको मोहब्बत थी पाकिस्तान से कि उन्होंने एक मीटिंग में गए तो वहां देखा कि जितने लोग हैं उन सबके आगे चाय की प्यालियां रखी हुई हैं, तो उन्होंने उसी वक्त बैठ के वहां कानून पास किया था कि किसी सियासी मीटिंग में खाना पानी सर्व नहीं किया जाएगा, जिसको बहुत शौक है कुछ खाने या पीने का वो अपने साथ लेकर आए। एक मौके पे कुछ चीजें कोई ऑर्डर कर रहे थे, गालिबन कोई चेयर्स थी या क्या थी, तो किसी ने एक इनके घर के लिए पर्सनल चीज ऑर्डर कर दी थी तो इन्होंने वापस भेज दी थी। अच्छे लीडर्स जो होते हैं ना, सिद्क वाले होते हैं, उनको गम क्या होता है कि किसी चीज पे जवाबदेही ना हो जाए। तो याद रखिए, आज फिर रिवाइवल की जरूरत है, आज भी दीन का काम करते हुए वसाइल की जरूरत है। जितना मर्जी आपके पास टैलेंट हो, रिसोर्सेज नहीं मिलते, जाया होते हैं। और ये कल अल्लाह पैसे वालों को पूछेगा, जहां भी दुनिया में इस्लाम को गलबा नहीं मिला, इल्म नहीं फैला, वहां जाके आप कह लीजिए कि सियासी निजाम नहीं चला, अल्लाह सियासतदानों को पूछेगा, हर तरह की हिसाब है। इसलिए जिसके पास कुछ नहीं है वो तो शुक्र करे, सबसे ज्यादा फिक्र उनको होनी चाहिए जिनके पास कुछ है। टैलेंट नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है फिक्र की। जब टैलेंट है और उसको कहीं गैरों में इस्तेमाल करते हैं और अपने वर्क दिन रात पकड़ के ऐसी चीजों में लगा देते हैं कि हलकान होके बिस्तर पे पढ़ें कि नमाज भी बच्चा पढ़ ले तो कहते हैं शुक्र है, 8 घंटे पढ़ के आया स्कूल से कॉलेज से, तो दूसरी चीज क्या करेगा, तो फिर याद रखिए कि फिर बात नहीं बनेगी। और याद रखिए एक बात, आखिरी करके आगे चलती हूँ क्योंकि ये बात आगे भी अगली आयतों में आएगी, और वो क्या है, जो लोग इस्लाम के नाम पे कुछ करते हैं उसके दौरान अगर उनको अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल रहा ना, तो याद रखिए कि इस्लाम कभी नहीं फैलेगा। आज नमाजें पढ़ने, मस्जिदें बनाने, मदरसे कायम करने के बावजूद अगर हमें खैर नहीं मिल रही ना, तो इसके अंदर कोई हमारी ही कमी होगी। जिन्होंने हिकमत से काम किया, जिन्होंने मेहनत की, उनके नाम आज भी मौजूद हैं। आपको पता है कि कनाडा की तो मैं खुद देख चुकी हूँ, कनाडा में एक पूरी रोड है जो एक मुसलमान ब्रदर के नाम पे, फजलुर रहमान। शिकागो में सबसे ऊंची बिल्डिंग जो टावर है ना, वो एक मुसलमान के नाम पे है, वहाँ लिखा हुआ, वहाँ वो एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने वो जगह बनाई थी। सड़कों के नाम, मैं खुद एक ऐसी जगह जा चुकी जब हम मुड़े तो सड़क का नाम वो, कहा क्यों, कहा क्योंकि इधर ये इदारा है, तो उस इदारे की वजह से इतने लोग उस सड़क पे आते थे, बल्कि शायद उसी को रास्ता देने के लिए वो रोड बनी थी, तो मुसलमानों का नाम है वहां। तो याद रखिए, काम करेंगे तो बात बनेगी। अल्लाह सुभान व तआला ने यह सब कुछ बताया, और यहां पर देखिए मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा, ये भी बड़ा काबिल गौर नुकता है। लोगों को नहीं कहना, रब से सरगोशियां करें, तू डाल लोगों के दिल में, तू लोगों को कह वो करें, यकीन करें वो ऐसे इसबाब पैदा करेगा कि आप सोच नहीं सकते। आज रात को मैं एक सुबह चीज सुन रही थी, अब सुनाने में देर लग जाती है, दिखाने में, अपने लफ्जों में बता देती हूँ कि एक सऊदी स्कॉलर थे तो वो एक बात सुना रहे थे कि मैं एक पाकिस्तानी डॉक्टर से मिला एक मौके पर। खुलासा क्या है कि वो कहते हैं कि मैंने उससे पूछा आप कौन है, तो उसने अपना नाम भी बताया और कहा कि मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन हूँ, यानी जो ब्रेन की ट्यूमर और दिमाग का इलाज करता है वो। खैर, वो कहते हैं कि जब उनसे बात हुई, हज के ऊपर गए हुए थे, तो उनसे कहा कि कोई अपनी जिंदगी का वाक्या तो सुनाए, क्या वाक्या, कोई अच्छा जो है। फिर उसमें उन्होंने सुनाया कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जहाज में सवार हुआ था, थोड़ी ही देर बाद हमें पता चला कि हमारे जहाज में कोई खराबी हो रही है या मौसम इस तरह का है, तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी और आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। कहते हैं कि वो जहाज बड़ी मुश्किल से कहीं लैंड हुआ, जहाँ लैंड हुआ नीचे उतरे, उन्होंने सवारियों को उतार लिया, छोटा के सफर करने के लिए छोटा जहाज, यानी एक प्राइवेट किस्म का जहाज होता है वो यूज कर रहे थे गालिबन, फिर वो कहते हैं कि जब हम बाहर आए तो रेस्क्यू टीम को वहाँ आने में मुझे कहते हैं वो पता नहीं कौन सा सहरा था, जो सारी बात का खुलासा क्या है कि उन्होंने बताया कि जो रेस्क्यू टीम आएगी जहाज़ को ठीक करे कराएगी उसमें तो पता नहीं कितने दिन लगे क्या लगे। तो इन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा मसरूफ़ शख्स हूँ, और कहते हैं कि मैं वो बंदा था कि जिसको टाइम लेने के लिए लोग 6 महीने की अपॉइंटमेंट लेते थे। उसके बाद कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं जा सकता हूँ खुद, अगर मैं कोई सवारी को टैक्सी ढूंढ के किसी तरह चला जाऊँ तो मुझे इजाज़त है, 3-4 घंटे दूर है जहाँ शहर है, लोकल फ्लाइट थी। उन्होंने कहा आप जाना चाहें तो चले जाएँ। उसके बाद फिर वो जिस तरह ढूंढते डांटते, कहते हैं सफ़र इतना ख़राब था कि कोई जगह नहीं मिल रही, करते कराते कुछ करके कहते हैं कि एक जगह हमारी जो गाड़ी हमने हायर की वो भी ख़त्म हो गई कि वो भी नहीं चलेगी। हम गाड़ी को छोड़ के उतरे और हमें नहीं पता हम किधर है, सहरा था, लॉस्ट थे अंधेरे में। कहते हैं कि दूर हमें एक छोटी सी कोठरी में लाइट जलती हुई या कुछ वहाँ रोशनी दिखी, तो मैंने अपने साथी से कहा कि चलो इधर जाके देखते हैं, एक तो बहुत देर से सफ़र में इजाज़त लेके तो इधर नमाज़ पढ़ते हैं और शायद कुछ खाना पानी भी मिल जाए। कहते हैं जब हम गए तो नॉक किया तो अंदर एक औरत थी, बिल्कुल अपने आप को उसने ढका छुपा हुआ था, तो उसके साथ एक बच्चा भी लेटा हुआ था, कुछ इस तरह की कहानी थी। बारह कहते हैं कि हमने उसको समझाया कि हम इस तरह मुसाफिर हैं, हमें नमाज पढ़नी है, दिस एंड दैट, तो हमें थोड़ी देर चाहिए। खैर उसने अंदर जाके कुछ कहा सुन के इनको कहा कि आप आ जाएं। कहते हैं हम वहाँ रहे, थोड़ी देर रिलैक्स हुए, नमाज पढ़ी, तो हमने वापसी की इजाज़त मांगी उनसे। तो वो देखा तो उस औरत के चेहरे पर कर्ब था, कोई दुखी थी बहुत ना, तो इन्होंने कहा कि हम आपकी कुछ खिदमत करें। तो उसने कहा कि खिदमत करनी है तो बस दुआ करें एक मेरे लिए। क्या? कहने लगी कि मेरा बच्चा है, ये जो लेटा हुआ ये मेरा बच्चा है, इसको एक बीमारी डायग्नोस हुई थी, हमने सारे इर्द गिर्द के डॉक्टरों को दिखा दिखू दिया, लोगों ने इसके ब्रेन की तकलीफ बताई है, और कहते हैं कि सिर्फ इसका इलाज एक डॉक्टर के पास है, और उसका मसला क्या है कि वो 6 महीने से पहले की अपॉइंटमेंट नहीं देता, और वो 6 महीने की अपॉइंटमेंट लेने में मेरा बच्चा जो इंतज़ार नहीं कर सकता। कहते हैं मैंने कहा बच्चे को क्या पूछा, ये बताओ उस डॉक्टर का नाम क्या है। कहती जब उसने नाम लिया तो कहता है कि वो मैं हूँ। कहता है फिर पहले तो वो औरत रो रही थी ना, फिर मैं रोया, फिर उसने वो सारी कहानी सुनाई कि ये जहाज का रुकना, मौसम का खराब होना, ये इतने धक्के खाने, ये इस औरत की दुआ थी। ऐसी एक दुआ इमाम बुखारी की माँ ने भी मांगी थी। इंशाल्लाह ये वाकया उस दिन जिसे बुखारी की क्लास होगी आपको दिखाएंगे इसकी वीडियो के साथ कि दुआ में कितनी ताकत। हमने अल्लाह की कुदरत तो मांगी नहीं, लोगों को देखते हैं मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा। मैं कहती हूँ जितनी बड़ी जरूरत पड़ जाए आपको उतना अंधेरे कमरे में बैठ जाए कि अल्लाह तू कर मैं बैठी हूँ, मैंने ये कह दिया, मैंने ये नियत कर ली है, मेरा इरादा जब तू असबाब पैदा करेगा मैं ये काम करूंगी। और याद रखिए इल्म वालों से अल्लाह ने सिर्फ इल्म का पूछना, इल्म था कि नहीं वो तो दरख्त के नीचे बैठ के भी दे देंगे, उनको क्या लगे, उनकी बला से कोई उनसे लेता नहीं लेता, वो तो बस शेयरर हैं। सबसे बड़ी पकड़ उनकी होनी है क्यामत के दिन, जिनके पास रिसोर्सेस थे और उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने सिखाया कि लोगों की जेबों की तरफ नजर ना रखो, फिर ऐसी मदद होगी कि लोग हैरान रहेंगे। और वो मदद ऐसी थी, इधर देखिए हिजरत की बातें हो रही हैं और अगली आयत से क्या लग रहा है कुरान का, अगर आप रब्त देखें ना तो यकीन करें कि अल्लाह की तारीफ करने को दिल जाता है। इधर मक्का से मदीना जाने की बातें और साथ ही अगली आयत 81 में वकुल जाल हक व जहकल बातिल, और आप कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल भाग गया, क्योंकि इन्नल बातिल कान जहूका, यकीनन बातिल है ही भाग जाने वाला। फतेह मक्का की आयत आ गई। कितने ही शायद के साथ चल रहे हैं, ऐसे नहीं लग रही शायद पे कि इधर मक्का से हिजरत की मदीना है और देखो अगली आयत में मक्का फतह हो गया। 8 साल थे बीच के, कहाँ ऐन अल बदर, ऐन अल ओहद, ऐन अल अहज़ाब, खैबर, खंदक, ये सारी बड़ी बड़ी जंगों के बाद हुदैबिया का सफर हुआ, फिर उसके बाद उमरतुल क़ज़ा हुआ, सन 8 हिजरी में ये आयतें नाजिल हुई। लेकिन अल्लाह ने इन आयतों की तरतीब में बता दिया कि जब लोग सिद्क के साथ निकलते हैं और अल्लाह के लिए हिजरतें करने के लिए तैयार होते हैं, अपनी मन पसंद चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, अल्लाह की तरफ से मदद का फैसला आ जाता है। और यही अंदाज आपने पढ़ा था, आगे सिर्फ फत में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इधर उमरा करने की नीयत से मुसलमान निकले हैं 1400 और हुदैबिया के मुकाम पर रोके गए हैं, क्या आप आगे नहीं जा सकते। कितनी बड़ी बात थी, इतना सफर करके आगे जाने नहीं दे रहे और वहीं से वापसी पे अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना, हमने तो आपके लिए फतह के दरवाजे खोल दिए। तो याद रखिए, मैं और आप अपने ऊपर इसको लेके अब आखिर में समझ लें, सारी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा, मेरे शहर, मेरे मुल्क, मेरे घर, मेरे इस 5-6 फुट और मेरे बच्चों पे उस दिन आएगा जिस दिन नंबर एक मैं हिजरत के लिए तैयार, मैं कुर्बानी के लिए तैयार, मेरे अंदर सिद्क आ गया, जिस दिन मिल्ला दुन का नसीरा अल्लाह पे नजरें लग गई और जिस दिन ये यकीन हो गया कि अगर अल्लाह जो काम तूने कराना है वो तो हो ही जाना है तो तू मुझसे करा ले। आपकी दुआ में ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह मेरा ईमान है पूरी दुनिया में इस्लाम फैलना है, तो बस इसमें मेरा हिस्सा डाले। मुझे पता है लोगों ने मुसलमान होना, अल्लाह किसी को मेरे जरिए मुसलमान कर दे। अल्लाह मुझे पता है लोगों को हिदायत मिलनी है, मुझे उस हिदायत का जरिया बना ले। ना तो मैं और आप किसी को हिदायत दे सकते हैं, ना इस्लाम दे सकते हैं, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ और सिर्फ जरिया बन सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि हक आ गया, साबित शुदा बात को हक कहते हैं, जमी हुई बात, रासिख, मजबूत, जो आ गया तो आ गया। और जख़ा का अरबी में मानी खरजा होता है, निकल गया। बातिल हक का मतजाद है, कमज़ोर है, पीछे हम पढ़ चुके हैं वह तस हक अनफुसुहुम, और निकल जाएँ तुम्हारी जानें इस हाल में। जहूक फौल का वजन होता है, मुबालगा है, बिल्कुल ही जाने वाला, बिल्कुल इस तरह से बातिल जब जाता है तो ऐसे लगता है कि आया ही नहीं। जैसे अल्लाह की मदद जब आती है ना, तो बीमारी जब जाती है तो ऐसे लगता है कि कभी बीमारी आई कोई नहीं थी। गुर्बत जब जाती है तो लगता है कभी गरीब थे ही नहीं। जब शौहर बीवी की मोहब्बत दिल में पैदा होती है तो लगता है कि कभी दिल में कोई रंजिश थी नहीं। इस तरह से अल्लाह की मदद होती है। और मक्का के असाब शिकन हालात भी ऐसे ही थे, खूब अंधेरा, और इतने में आयताई कुल जाल हक वजह कल बातिल, ऐसे ही जैसे अंधेरी रात में कोई तेज बल्ब जला दे कि लोगों रोशनी आ गई। और देखिए मुस्तकबिल के लिए माजी का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, ये कंफर्मेशन के लिए होता है, हो गया, डन डन। और इस आयत के नजूल के 9 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में रखे हुए बुत तोड़ रहे थे और आपकी जुबान मुबारक पे यही आयत थी, कुल जाल हक वज़हक अल्बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। याद रखिए पिछली आयत और इस दोनों को जोड़ लीजिए। हदीस में आता है सुल्तान की वजह से अल्लाह बहुत सी उन बुराइयों को रोक देता है जो सिर्फ कुरान से नहीं रुक सकती थी। यानी लोग कुरान की नसीहत तो कर सकते हैं कुरान से, लेकिन हुक्मरान ऐसे लॉज बना सकते हैं जिसके डर से लोग बुराइयों को छोड़ दें। इस्लामी ताकत से मरूब होकर लोग बुराइयां छोड़ देते हैं, और जब हक आता है ना तो फिर बातिल तो वाकई भाग जाता है। सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, बैतुल्लाह के आसपास 360 बुत थे, 360 बुत थे। आप अपने हाथ की लकड़ी से इन्हें कचोके दे रहे थे, ऐसे जैसे वो ठोकर लगाने वाला स्टाइल होता है ना, और यही आयत पढ़ते जाते थे और कह रहे थे हक आ चुका और बातिल ना तो दोबारा आ सकता है ना लौट सकता है। अबू याला में आता है कि अल्लाह के नबी के साथ हम मक्का में आए, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 360 बुत थे जिनकी पूजा पाठ की जाती थी। आपने फौरन हुक्म दिया कि इन सब को ऊंधे मुंह गिरा दो, फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई। क्या पता चला कि जब मुसलमानों को मुल्क मिलते हैं तो बुत टूटने चाहिए। खुद से सवाल कीजिए, 1947 से लेकर आज 2014 तक कितने बुत टूटे हमारे मुल्कों के। पहला काम ये होता है जब अल्लाह आपको मुल्क दे अपने इस्लाम के नाम पे, सबसे पहले गैरों के कानून को विद थैंक्स वापस कीजिए। वी डोंट नीड ब्रिटिश लॉ एनी मोर। उनका कानून उनको खूबसूरत रैपिंग पेपर में डाल के वापस करें और लेके आइए वहां इस्लाम को। क्योंकि सूरत मायदा में अल्लाह का फैसला पढ़ चुके हम कि वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, जो अल्लाह के उतारे हुए पर फैसले नहीं करता, फौलाएकुमुल ज़ालिमून, काफिरून, फासिकून। 3 दफा वो आयत वहां गुजरी थी कि अल्लाह के कानून को नाफिज करना पड़ता है। कहने से तो कुछ नहीं होता, ये कौन सी बड़ी बात है। कोई भी मिसाल ले लीजिए, आप नाम लेके किसी मुल्क का ले लीजिए और कह दें कि वो मुल्क मुसलमान हो गया, हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए जो मराहिल है ना, उसमें कुर्बानियां और जान देने वाले साथी, ऐसे साथी कि जो کہتے ہیں کہ بس کہیں نہ کہیں ہمیں کھپا لیجئے، کہیں نہ کہیں ہمیں لگا لیجئے، اور اس طرح سے پھر اسلام لوگوں کی زبان پہ عام ہو جاتا ہے جیسے ان کا ذاتی کام ہو. یاد رکھیے، جب دین کے کام اور دنیا کے کاموں میں فرق ہو، جب ذاتی پسند اور ناپسند اور دین کی پسند اور ناپسند میں تضاد ہو، ترجیحات فرق ہو، تو اسلام نہیں آئے گا. آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے مرحلے آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کروا کے ہم سب کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ حالات ہے کہ جب مسلمان تھوڑے تھے. اور آپ ایک مزے کی بات تو دیکھیں، آپ اور میں تو بڑے سیکیور ماحول میں پڑھتے ہیں نا یہ آیتیں. جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھیں، مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ کثیر تعداد حبشہ میں جا چکی تھی، کچھ جان بچاتے ہوئے مظلومی بے کسی کی حالت میں مکہ میں رہ رہے تھے یا مکہ کے ارد گرد گزر رہے تھے. اللہ کے نبی کی جان کو ہر وقت خطرہ تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف باطل 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 تھا، حق کے تو کہیں آثار بھی نہیں تھے. اور اس وقت کہہ دیے کل جال حق و زحق الباطل، یہ کیسا کھیل لگتا ہوگا، لوگ ہنسے نہیں ہوں گے اس بات پہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر کھدال مارا اور وہ پتھر ٹوٹ گیا جو صحابہ سے نہ ٹوٹا، تو آپ نے کہا کہ مجھے کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے گئے، مجھے روم اور فارس کی چابیاں دکھائی گئیں، تو منافقوں نے ٹھٹھے لگائے تھے، ہنستے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو آج جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں یہ کیسر و کسرا کے محلات کے. پیچھے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ دور کی خبریں تو محمد دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے. اس وقت لوگ ہنسے ہوں گے، یہ بالکل ایسے جیسے آج میری زبان سے کوئی یہ کہہ دے اور کوئی سن لے کہ دیکھنا ان قریب اسلام غالب ہوگا، ان قریب دنیا کا فلاں 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 ملک اسلام پہ آ جائے گا، فلاں بڑی بڑی شخصیات مسلمان ہوں گی. تو لوگ کہیں گے پہلے اپنا گھر تو جا کے زیدہ کریں، پہلے اپنے مسلمانوں کو تو ٹھیک کریں، ہماری باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، اندھیرے دنوں میں جو لوگ دین کا پیغام لے کے اٹھتے ہیں نا، بڑا اللہ کے ہاں مقام ہے ان کا. کل جب دین پھیلے گا پھر تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تو لوگوں نے فوج در فوج اسلام پہ آنا ہے.